नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची का मसौदा आज प्रकाशित कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अगले साल 22 जनवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। केरल, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची भी आज बाद में जारी की जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके नाम सूची में दर्ज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जो भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला समझौता है। उन्होंने कहा कि वार्ताकारों में लगभग सभी महिलाएं शामिल थीं। श्री मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एक लेख को साझा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत के आज के एफटीए केवल शुल्क कटौती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के व्यापक मिशन का हिस्सा हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दोपहर श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरत से मुलाकात की। इस दौरान श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जय, श्रम और उप वित्त मंत्री अनिल जयंत तथा उप पर्यटन मंत्री रुवान रणसिंघे भी उपस्थित थे। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी देशवासियों को सुरक्षा देने और देश की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज नई दिल्ली में 38वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी एंडोमेंट व्याख्यान में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दशक में आईबी जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने देश के आंतरिक खतरों को समाप्त किया है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित नीतियां और परियोजनाएं तैयार करने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में से एक है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन एआई महाकुंभ को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एआई स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सृजन और व्यापक ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। एक वीडियो संदेश में श्री चौहान ने कहा कि ये योजना मनरेगा के आगे का कदम है।
विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी, और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है।
दिल्ली की एक अदालत ने आज कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। ये मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वर्ष 2008 के एक भूमि सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले से संबंधित है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब धनशोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत चार्जशीट पर ईडी की याचिका पर अगले वर्ष 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। कई हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास की हत्या किए जाने के विरोध में आज नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और क्षेत्र में 3 स्तरीय नाकेबंदी की गई है। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।